नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक है वक्त की कदर कीजिए का। इस्लामी शायर व आदाब वक्त की कदर व कीमत पर ज़ोर देते हैं, पेज नंबर 16। इस्लामी फ़राइज़ व आदाब वक्त की कदर व कीमत और उसकी अहमियत को अपने हर मरहले में बल्कि हर जुज़ में भरपूर तरीके से वाज़ह करते हैं और इंसान के अंदर कायनात की गर्दिश और शब व रोज़ की आमदो रफ्त के साथ वक्त की अहमियत का एहसास और शऊर बेदार करते हैं। हम देखते हैं कि जब रात रुखसत होती है और फजर के चेहरे से अपना निकाब उतारती है तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला उठता है, कौन? मुअज्जिन। और अजान की गूंज से आफाक को भर देता है और ज़माने के कानों में रस खोलता है, गाफिलों को होशियार करता है और सोने वालों को जगाता है कि वो उठें और पाकीज़गी सुबह से बहरावर हों। हैया अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल्फला, आओ भलाई की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। लिहाजा जो लोग पाकीज़ा और बावजू होते हैं, जिनकी ज़ुबानें ज़िक्र इलाही से तर और दिल शुक्र गुजारियों से लबरेज़ होते हैं, वो इसका जवाब देते हैं, सदकता व बररता, तुमने सच कहा और तुमने नेक काम किया। ये लफ्ज़ कहाँ से आए हैं? तो आप देखिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बररता कहना किसी हदीस से साबित नहीं है। हाफिज़ इब्ने हजर ने इसके बारे में कहा कि इसकी कोई असल नहीं है। अब चूँकि असल किताब में ये थे तो लिख के नीचे फुट नोट दे दिया गया। पढ़ने का यही तरीका होता है कि जहाँ कोई कमी बेशी है तो उसको वाज़े कर दिया जाए। और रिवायत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान के जवाब में कहने का, वो क्या है? इज़ा समेतुल मुअज्जिन फ़कूलु मिस्लमा यकूलुल मुअज्जिन, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो वैसे ही कहो जैसे मुअज्जिन कहता है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो लिहाजा यही जवाब देना चाहिए। और हैया अलस्सला और हैया अलल्फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहना चाहिए। जैसे ही तुम जल्दी से नमाज के लिए उठते हो, शैतान की सारी गिरहें खुल जाती हैं। ये आपने हदीस सुनी भी है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी में 1142 1142 और मुस्लिम में 776 776 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरा पर फूंकता है, सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह को याद करने लगे तो ये गिरा खुल जाती है। खुद से पूछें, हर रात मेरी गिरा खुलती है ये वाली? फिर जब वो वुज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, फिर अगर नमाज़ पढ़े तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त आदमी चाको चौबंद खुश मिजाज रहता है, वरना सुस्त और काहिल रहता है। यह आपने नोट किए कभी? जब फजर ना पड़ी, अल्लाह ना करे कभी पढ़नी थी और कज़ा हो गई, देखिए सारा दिन कैसे दिल महसूसा रहता है। जब दोपहर का वक्त हो जाता है, सूरज ढलने लगता है और लोग दुनियावी मशागिल में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो इस वक्त मुनादी अल्लाह की किब्रियाई बुजुर्गी और रिसालत मुहम्मदी के इकरार के साथ नमाज और कामयाबी की तरफ लोगों को बुलाता है। और ये पुकार सुनते ही लोग अपने कारोबार और ज़िंदगी की मसरूफियात से बाहर निकल आते हैं ताकि चंद मिनट के लिए अपने खालिक और राजिक के हजूर खड़े हों और मालो दौलत के हसूल की सही और जहद यानी कोशिश से अपने आप को थोड़ी देर के लिए यकसू कर लें। यह कैफियत बिलअमूम जहर के वक्त होती है, जब हर चीज़ का साया इसके मिसल यानी बराबर हो जाता है और सूरज किसी कदर माइल बग़रूब होने लगता है, तो मुअज्जिन तीसरी बार नमाज असर के लिए पुकारता है। जब सूरज की टिकिया रूपोश हो जाती है और इसका चेहरा उफक से गायब हो जाता है, तो चौथी बार मुअज्जिन नमाज मगरिब के लिए बुलाता है, जो दिन की आखिरी और रात की पहली नमाज है। जब शफक गायब हो जाती है तो फिर एक बार ईशा की नमाज के लिए रब्बानी आवाज़ बुलंद होती है और यह नमाज मुसलमान के दिन के ख़ात्मे के लिए होती है। इस तरह मुसलमान अपने दिन का आगाज़ भी नमाज से करता है और इख्तिताम भी। सोचिए, अब यहाँ तक रुक के देखें ना तो एक दिन की पांच नमाजों का एनालिसिस है ये। और आप देख रहे हैं कि हर नमाज कहाँ है? जहाँ वक्त का पहिया किसी दूसरी चीज़ में घुस रहा है। रात सुबह में ढल रही, सुबह हुई तो अब जवाल शुरू हो रहा है, जवाल हुआ था तो अब बिल्कुल ही साए लंबे हो रहे हैं, और उधर से जब मगरिब के वक्त सूरज ढल रहा है और ईशा बिल्कुल ही स्याही। यानी हर नमाज ऐसे लग रहा है कि एक पॉइंटर है, जैसे मुख्तलिफ टुकड़े आप जोड़े ना पांच, तो जहाँ वो टुकड़ा जुड़ता है ना दूसरे से, वहाँ एक नमाज है। यही है तरफ, और ये नहार का लफ्ज़ भी आता है, किनारों पे। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे दिन का जब भी कोई नया रुख आए तो उस वक़्त हम इबादत की हालत में मसरूफ़ हों। अब यहाँ से हफ्ते पे चलते हैं। हफ्ते का आगाज़ कैसे होता है? हफ्ते में एक दिन जुमे का आता है। इस दिन मुनादी हफ्तेवारी इज्तमा, इज्तमाई नमाज यानी जुमे की नमाज के लिए एक नई आवाज़ लगाता है। इसकी एक ख़ास शक्ल है और कुछ मखसूस शराइत हैं। क्या पता चला? एक दिन में 5 पॉइंटर्स हैं, 5 नमाजों की सूरत में, और इस हफ्ते में 7 दिन। तो हर हफ्ते में एक दिन जहाँ वो पॉइंटर मिलता है वो जुमे का दिन है। हर जगह आप देखिए कि टाइम को हिसाब में रखा जा रहा है। फिर इसके बाद अगली चीज़, इन फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज है। ये नमाज़ अल्लाह के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। इशराक और बाद दूसरी नफिल नमाज़ें भी शब और रोज़ के मुख्तलिफ अवकात में अदा की जाती हैं, और हर महीने के आगाज़ में जब नया चांद तुलू होता है तो मुसलमान इसका इस्तकबाल अपने रब से इस दुआ के साथ करते हैं। यानी पहली बात तो देखिए कि तहज्जुद में क्या है कि रात की घड़ियाँ भी गफलत में ना गुजर जाएँ, थोड़ा सा वक्त ही सही लेकिन अल्लाह के आगे खड़े हों। और नया चांद, इसका वक्त के साथ ताल्लुक़ है ना? तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं, किस किस को ज़ुबानी आती है, हैंड रेस करें, और कौन पढ़ता है? तो आप बचे हुए कैसे हैं अभी तक? अब आपको ताना दूं कि 21 बारे पढ़ ली हैं और अभी तक चांद की दुआ नहीं याद की? चलें आप याद करें, ये जाने से पहले मैंने आपसे सुननी है, ठीक है? पढ़िएगा मिलके, अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बी व रब्बुकल्लाह व रब्बुकल्लाह। ये रिवायत है तिर्मिज़ी में, किताबु दावात में 345 नंबर रिवायत है, सलमान बिन सुफियान से। दुआ का तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह, इस चांद को हमारे ऊपर अमन और अमान और सलामती और सलाम के साथ निकाल, और हमें इन कामों की तौफीक दे जो तुझे पसंद है और जिनसे तू खुश होता है। मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है। क्या कहा जा रहा है इसमें? देखिए, आज अमन चाहिए, किसको नहीं चाहिए? पीस, पीस, सलामती चाहिए, ईमान चाहिए और सलाम चाहिए। तो ये दुआ पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी इसका आदी करें। किसी ने पिक्चर भेजी सऊदी अरब से, मुझे लगा कि पता नहीं क्यों भेज दी, और जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो उसमें ईद का चांद था। यानी उधर दिखा था तो बिल्कुल ऐसे जैसे पतली धारी है, और अभी मलगजा भी नहीं है, ना बहुत अंधेरा है ना रोशनी, और एक तार तो पहले दिन का चांद था। तो किसी ने पिक्चर भेजी, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा अल्लाह, ये कितना पतला सा चांद है, तो इसने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि कल रोज़ा नहीं होगा और ईद होगी। तो ये है रब्बी व रब्बुकल्लाह। यही हम चांद को कहते हैं कि चांद तू रब नहीं है, तुझे निकालने वाला रब है। और चांद को देखना, वल्लाह ही मुझे तो ऐसे लगता है कि क्या जन्नत में अल्लाह को देखने के बराबर दिखता है। कितना बड़ा मौजदा है, कभी आपने सोचा? इतना बड़ा चांद अल्लाह के आगे झुका हुआ है। वो कहता है निकल आओ तो निकल आता है, झुक जाओ तो झुक जाओ, कभी पूरा निकलो कभी आधा। कभी मर्जी की चांद ने? एतराज़ किया? कोई रायजनी की? कुछ दिन का नहीं निकलना, नहीं निकलना, कभी आधी रात को निकलना तब निकलना। आप ज़रा चांद की सारी मंजिलें तो पढ़ें, 27 या 28 हैं टोटल। हर रात का चांद मुख्तलिफ जगह पे होता है। तो मुझे आपको भी मर्जी छोड़नी है, ऐसे मुस्लिम बन जाए जैसे सूरज और चांद है, फिर देखिए अल्लाह आपसे क्या काम लेता है। और याद रखिए, अल्लाह जिनको दीन के लिए चुनता है ना, उनमें एक कॉमन वसफ है, इताअत, खुद सुपुर्दगी, अपनी अक्ल को झुकाकर अल्लाह के आगे झुक जाना। हर साल रमज़ान के महीने में जब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के चाहने वालों आगे बढ़ो और ए शर के चाहने वालों दूर रहो। अपने आप से पूछें, क्या मैं बागियल खैर हूँ या बागियल शर हूँ? जिसको नेकियां करनी है वो रमज़ान में कर ले, और जिसको गुनाह से रुकना है वो रमज़ान में रुक जाए। इस मुबारक महीने में गुनाहगार तौबा करता है, रूगर्दानी करने वाला अपने रब की तरफ रुजू करता है और गाफिल अपनी गफलत से बाज आता है। और बहुत से वो लोग जो अल्लाह से दूर होते हैं इसकी जनाब में आ जाते हैं और रोज़ा और क़यामुल्लैल के ज़रिए अल्लाह की मग़फ़रत और इसकी खुशनूदी के तालिब होते हैं, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदारों से वादा फरमाया। ये भी हदीस के अल्फाज हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। पहली रिवायत जो है ये सही बुखारी की है, बाब सौ में रमदान। पढ़ते हैं, मन सामा रमदाना ईमानम व इख्तसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। और दूसरी रिवायत थोड़ी सी इससे फ़र्क है, मन कामा रमदाना ईमानम व इख्तसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। जिसने ईमान और अजर व सवाब की नीयत से रोज़ा रखा इसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने ईमान और अजर व सवाब की खातिर क़यामुल लैल किया इसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए गए। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि यहाँ से भी वक्त की अहमियत पता चलती है कि रमज़ान की जो घड़ियाँ गुजर गई तो गुजर गई, जो उसका अजर था वो उसका अजर था। रात की घड़ियों में जिसने इबादत करनी थी कर ली तो कर ली, वो गुजर गया। अब अगली रात तो आएगी लेकिन वो रात नहीं आएगी। रमज़ान के इस रूहानी सफ़र के फौरन बाद एक दूसरा सफ़र शुरू होता है जो बयक वक्त मादी और रूहानी सफ़र है, और ये है सफ़र हज। जिसके महीने रमज़ान ख़त्म होते ही शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरत अल बकरा 197, अल हज अशहुरु मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्न अल हज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज वमा तफ़लु मिन खैरि यालमहुल्लाह वतज़व्वदु फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़्वा वत्तकून या उलिल अलबाब। हज के महीने मालूम हैं, जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नीयत करे इसे खबरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान इससे कोई शहवानी फेल, कोई बदअमली और लड़ाई झगड़े की बात सरजत न हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़रे हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ, और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेजगारी है, बस है होशमंदो नाफरमानी से बचो। बस सलफ़ सालेहीन के बारे में आता है कि वो 5 वक्त की नमाज़ को रोज़ाना की मीज़ान, जुमे की नमाज़ को हफ्ते की मीज़ान, रमज़ान के रोज़ों को साल की मीज़ान, मीज़ान समझते हैं ना, तराजू, और हज को उम्र की मीज़ान करार देते थे। इसलिए इनकी शदीद ख्वाहिश होती थी कि इनका दिन सही सालम गुजर जाए। जब दिन गुजर जाता तो इन्हें हफ्ते की सलामती की फ़िक्र लाहक होती, और जब हफ्ता गुजर जाता तो साल की फ़िक्र दामनगीर होती, फिर आखिर में उम्र की सलामती की फ़िक्र होती। इसी तरह इन इबादतों के पहलू ब पहलू ज़कात भी है, जो साल गुजरने पर वाजिब होती है, और हर कटाई और फल तोड़ने के वक्त उशर वाजिब है। उशर 10वां हिस्सा होता है, फसल का कटने के वक्त दिया जाता है। सूरत अलनाम आयत 141 में आता है, व आतु हक्कहु यौमा हसादिही, और अल्लाह का हक अदा करो जिस दिन तुम फसल काटो। मुसलमान वक्त की रफ़्तार से होशियार रहता है, इसकी गर्दिश पर नज़र रखे रहता है ताकि फ़रीज़ा ज़कात को ठीक वक्त पर अदा कर सके। अब आप देखिए कि इस टॉपिक में हमने क्या कुछ पढ़ा। अगर आप देखें इसके खुलासे में, पहली चीज़ इसमें हमने क्या देखी कि इस कायनात में हर वक्त तब्दीलियाँ हो रही हैं, 5 नमाजें, दिन की 5 मुख्तलिफ हालतें हैं। फिर हमने देखा कि जुमे का दिन पूरे हफ्ते का एक मेयार है, और इसके बाद हमने रात की नमाज को देखा। फिर चांद का आना और जाना वक्त पे है, कभी वक्त से आगे पीछे हुआ, पहले से पता होता है कब होगा कब नहीं होगा। फिर इसमें हमने रमज़ान के साथ साथ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की अहमियत देखी है। सारी बातों से क्या पता चला कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। ये क्यों कहा कि एक साल गुजर जाए तो फिर ज़कात दो? देखिए कितनी बड़ी बात है, वक्त की अहमियत है ना। यानी किसी को याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ मैंने कब ली थी और इसकी ज़कात कब है। तो टाइम पे नज़र रखना कामयाबी की दलील है। आज हम केयरलेस एटीट्यूड शो करते, इट्स ओके 5 बजे का है, बस 5:15 बजे हो जाएगा, कह दिए जी 5, 5:30 आ जाएं। भाई इसके बीच में 30 मिनट, 1, 2, 3, 4, 6, 10 तक, 30 तक गिनिए, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। 1 मिनट पीछे रह जाए तो बस रुकती है इधर, मुझे यहाँ की बसों का तो कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, ट्रेन रुकती है अगर आप 1 मिनट लेट हो, आपके लिए नहीं रुकेगी। फ्लाइट क्लोज हो गई, आप सिर्फ 2 मिनट लेट पहुँचे, क्या जहाज़ का दरवाज़ा खोल के आपको ले जाएंगे अंदर? नहीं लेके जाएंगे। तो अक्लमंद कौमों ने देखिए वक्त की तंजीम सीख ली, बंदा चाहता है जाए वो फ्लाइट नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए फ़्लाइटों को लेट करते हैं, फिर हमारी बैड रेपुटेशन होती है। एक भी स्टूडेंट ना आए क्लास में, क्लास शुरू होनी चाहिए कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स देखे हैं मैंने, शाम की क्लासेस होती हैं मोस्टली, जहाँ लोग जॉब से आते हैं, कोई रश में फंसा हुआ है, कोई कुछ है, घड़ी देख के वो क्लास शुरू करती हैं, कोई भी नहीं होता ना, अकेले शुरू में दुआएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में दुआएं ही होती हैं। तो कहती हैं कि मैंने अपने वक्त पे दुआएं शुरू कर देनी है। स्टूडेंट्स ब्रेक कर रहे हैं, अभी खा रहे हैं पी रहे हैं, वो जाके अपनी क्लास शुरू कर देती हैं। तो आप देखिए कि घड़ी तो नहीं रुकती मेरे आपके लिए, तो मैंने किसी के लिए क्यों रुकना है? इस हिस्से में से कोई बात आप शेयर करना चाहें तो, यह सवाल जी कुछ भी नहीं है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सारा? हम क्या सोचते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप पड़ेगा। तो क्लास का टाइम जो है वो क्या टाइम होता है? आप देखिए आधे घंटे दूर से आए, 1 घंटे से आए, 15 मिनट से आए, क्लास टाइम से अगर आप लेट हुए और आपको डोर क्लोज मिले, क्या कमेंट दे के जाएंगे? बंद दरवाजे मस्जिद के, अंदर नहीं आने, या आगे मस्जिद में क्लासरूम में नहीं आने दिया जाएगा, क्या फील करेंगे अगर बिलफर्ज रूल बना दिया जाए जी? आप नहीं, फिर आपको गुस्सा करना चाहिए ना रूल्स बनाने वालों पे। बिलफर्ज ऐसा हो नेक्स्ट संडे आप आए, और मस्जिद में तो आप आ ही सकेंगे, उससे तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि क्लासरूम बंद है, और कह दिया जाए कि जी सॉरी 10 मिनट पहले रूम्स क्लोज हो गए, जी क्या करेंगी? जी ये कह रही हैं कि हम गुस्सा करेंगे और फिर क्लास छोड़ देंगे, कि इनको हमारा एहसास नहीं है, और इनको क्या पता हम कितनी मजबूरियों से उठ के आते हैं, और हम तो बच्चों वाले हैं, और हम ससुराल वाले हैं, और हम शौहर को भी सेट करके आते हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही कही है इन्होंने, इन्होंने बस ये नहीं ख्याल किया कि यहाँ मैं बैठी हूँ और हम सारे बैठे हैं, और ये बात सच ना बोल दें। लेकिन ये एक बिटर ट्रुथ है, आज के दौर में रूल्स मानने और रूल मनवाने वालों को लोग क्रूशियल कहते हैं, बेरहम है, और जो रूल्स ना बनाएं उनको कहते हैं कितने अच्छे हैं। बस आप देखिए ना, आपका 3 साल का बच्चा, आप उसको लेकर किसी स्कूल में जाते हैं और आप उसको कहते हैं मुझे अपने स्कूल के रूल्स तो बताइए, तो वो कहते हैं आ जाए, कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। अच्छा आपका क्या रूल्स हैं छुट्टी? जब मर्जी छुट्टी करें, आने का क्या? जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए। आपके अच्छा कि किताबें कौन सी लेनी? कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी। बच्चे को खाने को क्या इजाज़त? जहाँ मर्जी बैठ के खा ले, जो मर्जी खाए। सच बताएं कि आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करेंगे? कितनी आसानी है, जब आपका दिल करे ना उस वक्त बच्चे को छोड़ जाया करें, जब आपकी आंख खुले छोड़ दें, हम तैयार हैं आपके लिए। हम तो पकड़ के कहेंगे तौबा करो, हमारा बच्चे को ये बना क्या देंगे, किधर जाते हैं। और मैंने देखा है कि उन स्कूलों में 5-5 साल की वेटिंग लिस्ट है, जो पहले से मुंह पे जवाब दे देते हैं कि रूल्स मानने हैं तो माने, नहीं तो जाएं। और हमारी सारी माजरतें और सारा एहसास महरूमी पता कब होता है? जब हम दीन के लिए काम करते हैं। इत्तफाक हुआ हमें कहीं भी बच्चों की क्लासेस करने का, पहली दफ़ा, और हर जगह पहली दफ़ा कहीं ना कहीं करते हैं, तो साथियों ने इतने डाउट्स शो किए, हाय लोग ये नहीं करेंगे। मैंने कहा जिसको नहीं करना वो ना आए, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कौन सी इतनी कोई जगह है, या आपके पास इतने असबाब हैं कि आपने ज़रूर 200 बच्चे जमा करना है, 20 बच्चे ले लें, तो क्या आपने लोगों को बेतुका कोर्स कराना है ताकि बाद में बदनामी फिर आपकी हो? आप क्यों ये सोचते हैं? अच्छा ये हमारे एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोग मानेंगे नहीं, लोग डर जाएंगे, लोग छुट्टी कर लेंगे, लोग बुरा, भाई क्या कहते हैं, जाएं घर बैठे, दुनिया में तो कोई नहीं ऐसे करता। सिर्फ दीन के साथ मस्तियाँ, यानी सिर्फ इस बात पे आप नाराज़ हैं कि दीन वाले फीस क्यों लेते हैं, तो आप घर रखिए अपने बच्चे को, खुद पढ़ा लें, कहीं और ले जाएं। आप इसलिए कहते हैं कि किताब खरीदनी पड़ेगी, तो मत खरीदिए, मत पढ़िए। आप मेरी टोन समझ रहे हैं, मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन ये एक आज हमारा दीन की नाकदरी का एक अंदाज़ है। अलमिया क्या ये रोग है और ये इसकी सज़ा भुगत रही है हमारी नस्लें। हम एक बड़े मॉल में जाते हैं और शायद 200-400 यूरो की एक घड़ी होगी और चुपके से लेके आ जाते हैं कि ईद का गिफ्ट है ना फिर के। और एक पाकिस्तान के स्टोर में जाते हैं, मैंने खुद अभी चंद माह पहले जाके देखा, अपने इर्द गिर्द वालों को मैं देखती, कोई सोच नहीं सकता 6-6 7-7 हज़ार रुपये का लॉन का जोड़ा खरीद के लाती हैं हमारी बहनें, और 2 से 3 हज़ार रुपया सिर्फ उसकी सिलाई का देती हैं। और वो कहाँ पहनना है, वो आम पहनने हैं, ये शादी ड्रेस नहीं है, ये पार्टी ड्रेस नहीं है, ये गर्मी ड्रेस है। 10 हज़ार रुपये पे एक जोड़ा बनता है पाकिस्तान में, नो क्वेश्चन एट ऑल। किसी ने उनका बायकॉट नहीं किया आज तक कि पाकिस्तान में तो इतनी सस्ती कॉटन है। और हमारे अपने कई साथी हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो कहते हैं वही मिल लें फैसलाबाद की बनी हुई, सिर्फ उनका कपड़ा बनता उधर से, किसी पे आप एक मोहर लगवा लो, किसी पे मोहर की कीमत है, ब्रांड की कीमत है, नाम की कीमत है, नो क्वेश्चन एट ऑल, इट्स ओके। लेकिन जहाँ दीन की बात, इतने मुकदमे, अस्तग़फिरुल्लाह, इतना आपको गुस्सा है, इतना तो सियासतदानों पर नहीं लोगों को होगा जितना आज लोगों को दीनदारों पर गुस्सा गिला। तो ये बेकदरी की बात है, ये महरूमी की बात है जी। आप
ये मेरा अपना ही अलमिया है कि मैं जब भी नमाज पढ़ने लगती हूँ तो नमाज के लिए खड़ी होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज जो भी अल्फाज अदा करूँ तो उसकी समझ मुझे आए। मैं कोशिश करती हूँ और जब मुझे समझ आने लगती है तो मुझे साथ ही जमाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और जब फिर मैं रुक जाती हूँ, रुक के फिर मैं उसको दोबारा पढ़ती हूँ, या तनाबुदू से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, और समटाइम मुझे 3 दफ़ा ये सूरत फातिहा पढ़नी पड़ती है, और यही मैं हर नमाज में मैं करती हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी नमाज लंबी हो रही है, लेकिन मुझे समझ आए तर्जमे की, अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ ब लफ्ज़ पता है कि ये क्या है, कैसे पढ़ना है, इसका क्या रूल है, ये है, लेकिन जब उसकी समझ आने लगती है तो जमाई आ जाती है।
देखिए, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़े। आपकी मेरी नेकियों का, हमारे तकवे का, हमारे ईमान का बड़ा दुश्मन शैतान है। और वो मदद किससे कराता है आपको पता है? उसका हेल्पर कौन है? हमारा नफ्स। एक जुमला इसमें रमज़ान में कई बार बोला है, आपको भी बता दूं, पहला कदम अपने नफ्स पे रख लें तो दूसरा कदम जन्नत में होगा इंशाल्लाह। हमारी जन्नत से हमें रोकने वाला हमारा नफ्स है। और शैतान ऐसे ऐसे रंग रूप बदल के आता है, ऐसे ऐसे रंग बदल के आता है हमारी जन्नत छीनने के लिए, कि लगता है कि ओनली यही हमारा वेल विशर है। सारी बात का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।